ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2004 की मुरलियां चल रही है और ये जो मुरली चली है ये 15/12/2004 की है। साल पूरा होने में केवल 15-16 दिन है, तो बाबा ने बहुत बड़ा काम तो दिया ही था उस साल, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संस्कार परिवर्तन कहाँ तक किए वो बाबा पूछते हैं, और जब संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं तो फिर हम क्या बन जाते हैं। आज बाबा ने कौन सी सभा देखी होगी, बेफिक्र बादशाहों की सभा। बेफिक्र बादशाह कौन बन सकते हैं, बेफिक्र बादशाहों की क्या क्या निशानियां होगी, बेफिक्र बादशाह बनने से क्या क्या प्राप्तियां होगी और कैसे बने वो आज बाबा ने बताया। तो बाबा ने पूछा है, जो समझते हैं हम बेफिक्र बादशाह हैं वो हाथ उठाएं। मैंने नहीं उठा रही है, सब बेफिक्र बादशाह है। तो सारे फिक्र बाबा को दे दिए हैं, क्योंकि दुनिया में तो हर एक के सिर पर कितनी बोझ है फिक्रों के, कितनी चिंताएं हैं। चेहरा भी दिखाते ना ऐसे बैठा है चिंता में, तो चिंताओं के टोकरे भरे पड़े उनके सिर पर, और बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाकर कौन सा ताज दिया है। बेफिक्र बादशाह का ताज कैसे मिलता है, जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं और सारा बोझ बाबा को देते हैं तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और कैसे देंगे बाबा को सारा बोझ, होगी तो फिक्र तो होंगे, कई बातें होंगी, लेकिन बाबा को तेरा में बदल देंगे। मेरा को तेरा, मुंह को तो कर दो बस। जैसे दिखाते ना गुरु नानक का, वो भी तोल रहा था तो 1 से लेके 12 तक तो तोला, फिर जब 13 आया तो 13 कहते तेरा 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 तेरा, और हो गया 13 भगवान का हो गया। पहले तो वो गृहस्थी था लेकिन भगवान का हो गया। तो बाबा कहते सारा बोझ मुझे दे दो, तुम क्यों उठाते हो बोझ। बाबा बैठा है बोझ लेने के लिए, आप उड़ते पंछी बनो, उमंग उत्साह के पंख लगा और उड़ो। अभी चलने का समय नहीं है, दौड़ने का भी समय नहीं है, उड़ने का समय है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो क्या खजाने बाबा ने हमें दिए हैं वो याद करो। इतने खजानों के मालिक हम बन गए हैं तो बाबा कहते हैं तुम तो बेफिक्र बादशाह तो सहज बन जाएंगे। बादशाह को कोई कमी होती है क्या। तो हम सब बेफिक्र बादशाह है क्योंकि बाबा को अपना बोझ दे दिया है। तो आज बाबा ने उस पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। तो हमें बेफिक्र बादशाह बनकर क्या करना है, बस दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं दो दुआएं लो, बस यही काम करना है। और ये दुआएं केवल संगम युग के लिए नहीं जमा करनी है, भविष्य द्वापर कलयुग में भी दुआएं देनी होगी ना भक्तों को, तो वो दुआएं भी जमा करनी है। तो कितनी दुआएं जमा करनी होगी और उसके लिए अपने संकल्पों में कितना परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि है तो सारा ही संकल्पों का खेल। और संकल्प तो बहुत बड़ा खजाना है बाबा ने हमें दिया है, श्वास संकल्प समय शक्ति ज्ञान गुण शक्तियां, ये सारे खजाने हैं और उसमें संकल्पों का खजाना सबसे बड़ा है। तो आज बाबा ने विशेष उस पर भी ध्यान खिंचवाया है कैसे हम अपने संकल्पों में परिवर्तन लाएं, तो सब कुछ इतना सहज हो जाएगा, मक्खन से बाल सब बोझ हट जाएगा। तो सारी मुरली इसी पर है, सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज 6/4/2025 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 15/12/2004 की। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। फिर कैसे दे कैसे ले वो बाबा ने बताया, पर ये आश है बाबा की। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रही है। ये राज्यसभा सारे कल्प में इस समय ही है, राज्यसभा सारे कल्प में केवल इस समय ही है। कल भी जब मीटिंग में बैठे थे तो यही कहते थे ना, वो तो राजनेताओं की लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन ये लोकसभा राज्यसभा से भी ऊंची सभा है। कौन सी सभा है? दिव्य सभा। दिव्य सभा तो कितनी ऊंची होती है, देवता बनने वालों की सभा। अभी सही ताजधारी है तो बहुत सुंदर सभा लगती है जब मीटिंग होती है एनुअल। ये राज्यसभा सारे कल्प में इस समय ही है, रूहानी फखुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। कौन बन सकता है बेफिक्र बादशाह? जो रूहानी फखुर में रहेगा, फखुर माना नशा, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हो तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो, निश्चिंत होके सोते हो, सारा बोझ बाबा को दे दिया, सारे दिन का पोता मेल बाबा को बता दिया, खाली हो गए और निश्चिंत होके सोते हो। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठते भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र हो, फिर बाबा पूछते हैं बेफिक्र हो, बने हो व बन रहे हो? कोई कहेंगे बेफिक्र बन रहे हैं, कोई कहेंगे बन गए हैं, तो बने हो व बन रहे हो, तो बन गए हो ना, तो हाथ उठाया होगा बाबा ने, बन गए, हाथ उठाए ना सभी ने, बन गए हो। बेफिक्र और बादशाह हो, बेफिक्र और बादशाह हो, अर्थात बेफिक्र बादशाह कैसे बन सकते हैं? स्वराज्य अधिकारी बनने से। जब स्व पर राज्य होगा तब बेफिक्र बादशाह बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी इन कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात किसको कहेंगे बेफिक्र बादशाह? स्वराज्य अधिकारी को। इंद्रियों पर भी राज्य तो मन बुद्धि संस्कार पर भी राज्य। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है, और किसी की सभा ऐसे नहीं हो सकती है। कोई फिक्र है? फिर बाबा बार बार पूछ रहे हैं कोई फिक्र? क्योंकि हाँ, क्यों किसी को कोई फिक्र नहीं है? क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, बाबा को दे दिया, बाबा आप संभालो, कोई भी बोझ नहीं है हमारे सिर पर, आप ही संभालो, क्योंकि आपका ही है, भगवान का है, मेरा तो है ही नहीं, तो क्या मैं फिक्र करूं? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को ही दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन, अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। अगर बहुत फिक्रों का चिंताओं का टोकरा लेकर बैठे हो माना, ये जीवन अमूल्य नहीं है। अमूल्य जीवन है तो कोई फिक्र नहीं है। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र बादशाह होंगे तो पवित्रता की चमक का पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा ही काम है, मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा, ये फिक्र उठा लिया ना। तो बाबा कहते हैं, अगर ये कोई बोझ उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। अब बोझ का टोकरा कोई उठाता है तो कैसे कैसे लगता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, कहाँ ताज और कहाँ टोकरा, दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? सिर पर ताज अच्छा लगता है या सिर पर टोकरा बोझ का अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता, बोलो। टीचर्स क्या अच्छा लगता है? बाबा ने टीचर से पूछा, ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। कौन से राजा हो? सभी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। लाइट का ताज कैसे आएगा? जब पवित्रता होगी। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाते हैं। तो पवित्रता का ताज ये हल्केपन का ताज है, लाइट का ताज है। पवित्रता का ताज में इतने हल्के बन जाते हैं ना, तो डबल लाइट बन जाते हैं। तो जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, कितने बादशाह बन गए हैं द्वापर युग से, राजे भी बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। क्योंकि जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, लाइट का ताज तो रावण ने ले लिया, छीन लिया है ना, तो केवल रतन जड़ित ताज ही रह गया। तो बाबा कहते हैं, कोई भी डबल ताजधारी नहीं बना द्वापर से, राजे तो बहुत बने हैं लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना द्वापर से। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, वो तो केवल संगम पर ही बनते हैं। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी वो भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत और कर्म इंद्रिय जीत विजयी बना देती है। पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा बेफिक्र बादशाह है? उसकी निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाला। राजा है ना, महाराजा है, बादशाह है, तो वो तो राजा ही करता है, वो तो अथॉरिटी है। तो स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाला। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। असंतुष्ट तब होते जब कोई अप्राप्ति है, हाँ ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो असंतुष्ट है। तो कोई भी अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो ऐसे बने हो, चेक करो, अब अपने अंदर चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं। वैसे तो गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, लेकिन बाबा कहते देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सब कुछ बाबा ने दे दिया है। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? संतुष्टता सभी श्रृंगार का ताज है। किसी ने सब कुछ श्रृंगार पहन लिया होता, हार वार पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, पर अभी तक ताज सिर पर नहीं है, तो भी वो राजा नहीं कहलाएगा, भले कितना भी उसको उसको गहने पड़े हो, पर ताज पहन लिया माना वो राजा है। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है, श्रेष्ठ मूल्य है। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना बाप दादा, ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना, सभी क्या है, हाँ वाह वाह, हाँ बाबा कहते वाह वाह हो ना बेफिक्र बादशाह वाह, तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। देखो बाबा ने फिर कहा, हाँ सब पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं, हाँ पीछे वाले सोचते हमको तो कोई देखता भी नहीं होगा, नहीं हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हो, हाथ उठाओ पीछे वाले, हे बेफिक्र बादशाह, बाबा तो देखो सब तरफ देखते, पीछे वालों को भी याद करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बेफिक्र फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है, देखो बाबा को पता है कभी तो आता है, कभी तो आता है, नहीं आता है अच्छा है, चलो नहीं आता बहुत अच्छा। बेफिक्र बनने की विधि वो सहज है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मात्रा को थोड़ा सा अंतर है, एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर, एक शब्द, कौन सा शब्द, वो शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, म को हटा के त करो, तो मेरे के बदले तेरा, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है, मैं और ते का, लेकिन फर्क इतना हो जाता है, हम मां को बदल के त कर दो, मेरे के बदले तेरे कर दो, तो फर्क केवल वो अक्षर का नहीं है, मां को बदल के त किया, लेकिन बाबा कहते हैं इतना फर्क हो जाता है, इतना फर्क हो जाता है, हाँ इतना फर्क हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, हम सब तेरे तेरे, बाबा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो, अभी भी किसी को लगता नहीं किया है मैंने, हाँ मेरे को तेरे में परिवर्तन तो कर लो, मेरा मेरा अर्थात, अगर मेरा मेरा कहेंगे तो क्या बन जाएंगे, मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, जो दास होता है ना, थोड़े थोड़ा पीछे मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, थोड़ा भी मुझे मिले मेरा मेरा, तो मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला, जो मेरा मेरा कहेगा वो दास भी है उदास भी है, माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास भी तो होंगे ना, उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, उदास कौन होते हैं, जो माया के दास होते हैं, तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं, तो उदासी आती है। और फिर बाबा दूसरा प्रश्न करते, उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, उदासी की भी टेस्ट कर लेते हो, हाँ उदासी आ जाती है तो टेस्ट कर लेते हो, उसको चख लेते हो, तो कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्यों क्यों कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, 63 जन्म तो उदासी है ना, मेरा मेरा कह करके उदासी रहे, वो अभ्यास है ना, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है उदासी। इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह हो, अगर कभी भी कहां कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो, बाबा अपनी झोली पसारे खड़े हैं, अगर आपके पास कोई भी बोझ हो, किसी कोने में रखा हुआ हो, तो बाबा को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना, अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी, आपकी जो अर्ध चेतना उस स्थिति में भी, सबकॉन्शियस स्थिति में भी कोई बोझ तो नहीं है। चलो कई बार कॉन्शियस स्थिति चेतन अवस्था में है तो लगता नहीं कोई बोझ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, उससे भी सूक्ष्म क्या है? अर्ध चेतना से भी सूक्ष्म क्या है? स्वप्न, स्वप्न। तो बाबा कहते हैं अर्ध चेतना सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं कि स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव न हो। अमृत वेले चेक करना, चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। उस समय थोड़ा लगता है बोझ है, अमृत वेले उठे थोड़ा बोझ महसूस किया, कोई चिंता है, तो उस समय बाबा को दे दो। तो बाबा कहते हैं चेक नहीं करना सिर्फ, पर चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा सो तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। क्यों बाबा को कहना पड़ता है बाबा को बोझ दे दो, हल्के हो जाओ, उदास मत हो, दास मत हो, क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखो, देखो क्या समय। यहाँ बाबा से समय भी पूछ रहा है कि मैं परिवर्तन करूं। कई कल हमको कोई बता रहा था कि ये बार बार भूकंप आ रहे, कितनी जगह भूकंप आ रहे, बार बार आ रहे हैं। ये भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि धरती थोड़ा पलट रही है, थोड़ा पलट रही है, वो प्लेट्स हिल रहे हैं और धरती थोड़ा पलट रही है, क्योंकि आखिर तो सतयुग में आना है। तो सतयुग में अभी तो 22 डिग्री टिल्टेड है, थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे उसको जीरो पर आना है। तो जीरो पर आने के लिए जबकि चारों ओर बाहरी मौसम ही हो जाएगा, उसके लिए तो जीरो पर आने, तो अभी धीरे धीरे टिल्ट होना शुरू हो रही है, मतलब वापस अपनी जो पूर्व स्थिति पर आने वाले, इसीलिए धरती हिलती है। तो किसी ने बताया, तो बाबा कहते हैं तो समय की रफ्तार को भी देखो और स्वयं की रफ्तार को भी देखो। फिर ये नहीं कहना हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, हाँ हमें तो पता ही नहीं था। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया, हमको तो पता ही नहीं था। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। किसी के किसको सोचते ना, अभी तक मेरा पुरुषार्थ ढीला ही है तो अंत में तेज कर देंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अंत में तब तेज कर सकेंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा, अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में नहीं कर सकेंगे तेज। बादशाह बनके तो देखो, बादशाह बनके तो देखो, बेफिक्र बादशाह बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, पर क्या होना है? उड़ना है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं बोलो, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए, पंख तो मिल गए हैं ना, कौन से है पंख? उत्साह और हिम्मत। ये पंख उमंग उत्साह एक पंख के रूप में और हिम्मत दूसरे पंख के रूप में, तो उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाप का वरदान भी है। पंखों के साथ साथ बाबा का वरदान भी मिला है। कौन सा वरदान? यादव वरदान। हिम्मत का भी पंख है, तो हिम्मत का एक कदम आपका और हजार कदम मदद बाप के, क्योंकि हिम्मत का कदम रखेंगे तब तो मदद मिलेगी। तो उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख मिल गए, तो हिम्मत रखी तो बाबा का वरदान है कि हिम्मत जो रखेगा उसको 100 गुना मदद मिलेगी। ये वरदान बाबा देते हैं। और बाप का वरदान भी है, याद है ना वरदान, हिम्मत का एक कदम आपका और हजार कदम मदद बाप के। 100 कदम भी नहीं, हजार कदम मदद बाप के, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, द्वापर कलयुग में बहुत मेहनत की तो थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय क्या दे दिया? बाबा ने भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त का मालिक बना दिया भटकने के बजाय। भटकते हैं तो कोई रहने का स्थान भी नहीं ना, और 3 तख्त का मालिक बना दिया। कौन से 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो लेकिन तख्त निवासी हो। कौन से 3 तख्त? एक तो है अकाल तख्त, तो अकाल तख्त निवासी भी हो। दूसरा बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और तीसरा भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो, होवरहार महाराजा महारानी भी हो। तो अभी अकाल तख्त, फिर बाबा का दिल तख्त, और तीसरा भविष्य का विश्व राज्य का तख्त भी है। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। तीनों ही तख्त अभी संगम पर ही मिलते हैं, भविष्य में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हो? हाँ, तो हाथ उठाया पांडवों ने। हाथ उठा रहे हो, तख्त नहीं छोड़ना। चलो तख्त नशीन हो तो तख्त छोड़ना नहीं। देह भान में आए तो देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, तख्त से उतर कर मिट्टी में आ गए। अगर देह भान में आए तो यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। तख्त नशीन हो तो बादशाह हो, देह भान में आ गए तो मिट्टी में हो। तो फिर तो बाबा कहते तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट्स में कौन कौन कहां तक पहुंचा है। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी तो पास विद ऑनर्स होंगे ना। 1 सब्जेक्ट में कम है तो पास विद ऑनर थोड़ी बन सकेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है, तो बादशाह ने हर एक बच्चे का, तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। कहाँ तक जमा किए, कितने खजाने? समय स्वास्थ्य संकल्प शक्ति और फिर ज्ञान गुण वो शक्ति, तो उस प्रकार से कितने खजाने बाबा ने दिए हैं वो कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया बाबा ने, हम बच्चों के जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने तो बाप ने सबको एक जैसे दिए, मुरली द्वारा ही दिए हैं, तो सबको एक जैसे खजाने दिए हैं। एक जितना ही दिया है, एक जैसा भी और एक जितना भी, एक जैसे भी और एक जितने भी, जितना भी दिया है। कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? अब कैसे पता चले कि वो खजाने जो बाबा ने हमें दिए वो हमारे अंदर जमा है, उसकी निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। अब वो श्रेष्ठ संकल्प सदा हमारे मन में कितने चलते हैं उससे पता चलेगा कि हमने कितने खजाने जमा किए। तो सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। हाँ, वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। ये वर्तमान समय कितना बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो उतना अभी बना सकते हो। ये समय का खजाना है। जितना तो बाबा ने क्या 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 कर सकते हो वर्तमान समय में भी, ये वर्तमान समय भी बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय जो प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो उतना अभी बना सकते हो। अब नहीं तो फिर आगे क्या, कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को अगर व्यर्थ गवाया, मान लो अर्थात अपनी प्राप्तियों को गवाया, संकल्प का खजाना गवाया माना व्यर्थ में संकल्प, समय चला गया, संकल्प चले गए व्यर्थ संकल्प करके, माना प्राप्तियों के खजाने को गवाया। ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना, हर आत्मा द्वारा दुआ का खजाना और परमात्मा द्वारा भी दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में सबसे सहज क्या है, दुआएं दो और दुआएं लो। ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं, अब कई क्या करते हैं कि कई क्या कहते हैं कि हमने दुख दिया नहीं लेकिन दुख ले लिया। अब दूसरे ने कुछ कह दिया तो उसका असर हुआ, मन पर लगा तो दुख ले लिया। तो कई कहते हैं ऐसे नहीं, दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया। अब ले लिया तो भी क्या हुआ, तो भी तो दुखी होंगे ना। अगर दुख ले लिया तो भी तो दुख तो होगा ना। तो दुआएं दो सुख लो। दुआएं देना आता है? अब ये दूसरा प्रश्न, दुआएं देना आता है? आता है, लेना भी आता है, दुआएं लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबको आता है, दुआएं देना भी आता है लेना भी आता है, तो मुबारक है। देने आता है, लेने आता है, दोनों आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता है, दुआएं लेना भी आता है और देना भी आता है तो और चाहिए क्या, और कुछ चाहिए, सब मिल गया। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ तो संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे। आज बहुत अच्छी बाबा ने युक्ति बताई है। अगर कोई बद्दुआ देवे तो आप क्या करेंगे, लेंगे। हाँ, कोई बद्दुआ दे तो लेंगे। अगर बद्दुआ माना ले भी लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही, आप बद्दुआ ले ली, अब उसने मेरे को कुछ कह दिया, तुम तो बुद्धू हो, अब इसने मुझे बुद्धू कहा, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, अब उसका दुख ले लिया, कुछ भी बोल दिया, तो अब मैं उसका दुख ले रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ मुझे क्यों कहा, क्या समझता है, तो दुख ले लिया। तो बाबा कहते हैं ये तो खराब चीज है, तो खराब चीज है ना, तो अगर मैंने बद्दुआ ले लिया तो आपकी अंदर स्वच्छता रही, क्या मैं बुद्धू हूँ, क्या मैं बुद्धू हूँ ना, कोई ऐसे तो मूर्ख हो कुछ नहीं कुछ कह दे, हाँ तुम तो कोई काम के नहीं हो। मैं कोई काम का नहीं हूँ, ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो कितना काम करता हूँ, मैंने कोई कह भी दे तो ये बद्दुआ हो गई। तो बाबा कहते तो बद्दुआ तो खराब चीज होती है, बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली तो अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना, वो बार बार उसका चिंतन ही करें, इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बुरी चीज है वो आपने ले ली तो अंदर स्वच्छता तो नहीं रही। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट तो बन नहीं सकते। अगर खराब चीज कोई दे दे तो क्या आप ले लेंगे? कोई आपको बहुत सुंदर फल दे दे लेकिन वो खराब है, अंदर से खराब है, देखने में तो बड़ा सुंदर है, और जैसे मान लो एप्पल दिया, कई बार होता ना सेब देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे काटो अंदर एकदम काला काला होता है। तो बाबा कहते हैं कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे फल, तो फल खराब हुआ दे देवे फल, तो फल तो बढ़िया है ऐसे ले लेंगे, देखने में तो बड़ा सुंदर है, पर पता है ये थोड़ा दाग है, इसका मतलब अंदर बहुत दाग होगा, तो फिर ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, या कहेंगे अच्छा तो है चलो दिया है तो ले लो, ऐसे कहेंगे क्या? चलो अगर दिया भी तो आप फेंक देंगे ना, या उसको जाके कहेंगे तुमने मुझे ऐसा फल क्यों दिया, अच्छा दे दिया छोड़ो ना फेंक दो खत्म। तो बाबा कहते हैं कोई बहुत तो चलो दे दिया है तो ले ले, कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन के अंदर धारण नहीं करो। अंडरलाइन, कोई भी आपको बद्दुआ दे, कोई ऐसा शब्द बोले जिससे आपको दुख महसूस हो, वो शब्द आप धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा, दाग पड़ जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं, 15 दिन पड़े ना, 15/12/2004 का है, तो अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। अभी भी बद्दुआ आपके मन में हो, किसी ने आपको दी हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? खाली पसंद की बात नहीं है, करना ही है, पसंद है या करना ही है। तो पसंद तो है लेकिन जो समझते करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो हाथ उठाओ। देखो बाबा हाथ उठवा रहे, करना ही है, करना ही है। हाँ बाबा 2-3 बार कह रहे करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आ जाए तो उस समय उस दिन बाबा के मिलन में, क्योंकि स्नेही सहयोगी भी तो बहुत है ना सेंटरों पर, भले वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, वो इतनी धारणा नहीं भी कर रहे हैं, हाँ खान पान की हो सकता है धारणा ना हो, लेकिन उन्होंने मकान दिया है हमें, जमीन दी है, वो सहयोग दिया है मकान बनाने में या कोई और कार्य में सहयोग दिया है, तो उन आत्माओं को बुलाया था, भले धारणा वाले नहीं भी होंगे लेकिन उन आत्माओं को बुलाया था। तो फिर बाबा अभी उनसे मिल रहे हैं, जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो एक लाइन में बिठाया था उन स्नेही सहयोगियों को, तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं कि आपने बाबा के कार्य में अपना सहयोग दिया, चाहे तन से धन से समय से हर रूप से सहयोग दिया है, तो आपको मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि सहयोगी तो हो स्नेही भी हो लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो तो अपने घर में आने की मुबारक है आपको, आप आए हो ना एक कदम और, स्नेह सहयोग तो 2 कदम तो है ही, लेकिन एक कदम और लिया जो आप बाबा के घर में आए हो तो मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे, समझते हो, हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। तो उन्होंने भी हाथ उठाया कि हम अगर स्नेह सहयोग के साथ है तो मदद, हम भी दुआएं देंगे दुआएं लेंगे तो मदद मिलेगी। तो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। हाँ, फिर बाबा ने कहा लंबा हाथ उठाओ, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अभी टीचर देने हैं ना, सुन रही है ये, आपके कई स्नेही सहयोगी होंगे तो उनको भी आप कहना देखो बाबा ने आपको भी मुबारक दी है, आप ये भी दुआएं दो दुआएं लेने का काम करो तो आप भी संपन्न बन जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, बाबा के बच्चे तो सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वो अगर समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ, फिर उसे हाथ उठाया। अच्छा, करेंगे, टीचर्स हाथ उठा रही है, अब टीचर्स है बैठी है, क्योंकि कई तो सब तो चली गई, जो टीचर अभी तक बैठी हाथ उठाओ। हाँ, तो बाबा पूछ रहे उठा रही है, टीचर उठा रही है, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, तो शांति वन में जो आगे बैठे होंगे ना, लाइट वाला साउंड वाला माइक वाला, मतलब ये सब आगे बैठते हैं, तो फिर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, तो बाबा उनको देख रहे हैं कि वो तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तो कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, तो बाबा ने उनको छोड़ दिया। उनको कैसे क्या कह दिया, ये समझते हम तो देते ही हैं, हम तो दुआएं देते ही हैं क्योंकि सेवा कर रहे हैं ना, बैठे बैठे भी बाबा की मुरली भी सुन रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तो वो तो समझते हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए, किसी ने आपको बद्दुआ दी और उसका प्रभाव आप पर पड़ भी जाए, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। अब ये बहुत बड़ी बात है, 10 गुना ज्यादा दुआएं देकर उसको खत्म कर देना, है ना। हम इसका मिसाल देते हैं, तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। मैंने बद्दुआ दे दी, जिसने मुझ पर बुरी नजर रखी उसका मुंह काला, लेकिन कहां मैंने यही पढ़ा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला, तेरा भी हो भला। हाँ, उसको भी दुआ दे दो, भाई तेरा भी भला हो। तो एक बद्दुआ का प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, तो उसने बद्दुआ दी और आपने ले ली तो नुकसान तो हमको ही होगा, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया। उसमें मिसाल देते हैं, किसी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट में मिसाल दिया, तनाव मुक्त जीवन का वो भाषण करते, उसमें मिसाल दिया कि ऊपर मालिक रहता था, नीचे उसकी जो किराएदार थे वो रहते थे, तो किराएदार नीचे रहते थे, अभी उस दूसरे दिन उनको किराया देना था, मकान मालिक तो तैयार बैठा था, अगले दिन मुझे मेरा किराएदार मुझे किराया देगा, लेकिन उसको नींद ही नहीं आई किराएदार, क्योंकि पैसा नहीं था किराया देने के लिए, तो रात को 12 बजे उठ करके मालिक का द्वार खटखटाया, मेरे पास किराया देने का पैसा नहीं है, मैं कल नहीं दूंगा, कल नहीं दूंगा, और दे करके चला गया। अब वो जो उसका जो टेंशन था किराएदार का, वो टेंशन मालिक को दे दिया, मेरा किराएदार कहता है कि मैं नहीं दूंगा, कैसे नहीं देगा, अब उसकी चिंता बढ़ गई, नहीं तो वो तो समझ रहा था कि मुझे कल किराया मिलेगा, और जो किराएदार था वो बोल करके भूल गया कि अभी तो मैंने बोल दिया ना मैं किराया नहीं दूंगा, उसको तो नींद आ गई, पर जिस जो मालिक था उसको नींद नहीं आई, तो अपना बोझ जो मालिक को दे दिया। तो ये ऐसे मिसाल देते हैं, तो बाबा कहते हैं एक नुकसान तो अपने को ही होता है, क्योंकि बद्दुआ हमने ले ली, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ समा ली दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। वो टेंशन ले लिया उसने, और जिसका कारण वो टेंशन में होगा उसने टेंशन अपना दे दिया। तो देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला हो जाएगा, दे करके भूल जाएगा। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की भी सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि यह सबके प्रति एक आश है। क्योंकि सहयोगियों को भी तो परिचय तो मिला है ना, तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। ये बाबा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे, आप युग से पूज्य बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। आपके आगे वो भक्त आएंगे तो आप उनको दुआएं दे सकेंगे। इतनी दुआएं यहाँ जमा करो संगम पर। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, तो फिर बाबा कहते हैं बाप दादा की आशा अंडरलाइन की। क्या आशा है? दुआएं दो, दुआएं लो। जिसने की वो हाथ उठाओ। हाँ, ये नोट कर ली सबने, हाथ उठाओ कर ली। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है। हाँ, याद है, टीचर्स को याद है, लेकिन ये बड़े संकल्प की रिजल्ट 1 मास में देखेंगे। दुआई दो, दुआई लो, वो दृढ़ संकल्प किया, 1 मास में देखेंगे। क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है, 15 दिन ही पड़े हैं। 6 मास का होमवर्क वो अपनाए, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में पहुंचे हैं, वो हाथ उठाओ। बाबा ने उनसे हाथ उठवाया। बहुत अच्छा, देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। जो पहली बार बाहर आने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, अभी नया वृक्ष है, वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियाओं को भी बहुत प्यारे लगते हैं। वो चिड़ियाएं, वो छोटे छोटे जब बहुत कोमल पत्ते होते हैं वो खाती है चिड़ियाएं, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियाओं को ही नहीं, जो बच्चे हैं वो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना अमर पद पाना ही है। पहली बार आए हैं, नए हैं, तो बाबा कहते अमर रहना, ये वरदान दिया, अमर रहना अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को सदा रूहानी फखुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाता में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े पे बड़ी दासी प्रकृति है, प्रकृति हमारी दासी है, सबसे बड़ी दासी। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, हाँ मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति को तीनों ही ऑर्डर में है। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। उसमें कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है, ये कंबाइंड रूप, ये कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि आकी जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, गई सेवा करने और डिस्टर्ब हो गई सबसे, और लौटो तो कहो मैं तो नहीं करूंगा सेवा, आधे में आ गई माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए अंडरलाइन करो कि सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व का, सर्व की कंबाइंड सेवा। मेरे अपनी भी मैं सेवा करूं और दूसरों की भी सेवा करूं, ये स्व सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा, ये दो सेवा कंबाइंड, इसको कहते कंबाइंड सेवा। इसके बिना सफलता असंभव है। तो मैं और मेरी सेवा बाबा के साथ, तो कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे।